मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 8 अगस्त 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत मैं एक श्रद्धांजलि से करना चाहूंगा। आप सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि हमारे देश की एक बहुत ही प्रिय जनप्रिय नेता सुषमा स्वराज जी नहीं रही, तो सबसे पहले मैं आप सब अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने शरण में जगह दें और उनके परिवार वालों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें। और सच पूछे तो केवल परिवार वालों को ही नहीं बल्कि हम सबको जो उनसे इतने गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, जाने अनजाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सबको भी दुख सहन करने की शक्ति दें, क्योंकि जैविक रूप से भले ही हम उनके परिवार के हिस्से न हों लेकिन सच पूछिए तो उनका जो व्यवहार था, उनके जो काम थे, उन सब का फैलाव इतना ज्यादा था और उनकी गहराई इतनी ज्यादा थी कि वो हम सबके दिलों में भी बहुत ही गहराई के साथ, पवित्रता के साथ और बहुत स्थायी रूप से उपस्थित हो गई थी। तो दोस्तों आज इसी विषय पर मैं आप सबसे थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। कल सुबह सुबह जब हमारे यहां मेड सर्वेंट आई तो उसने मेरी पत्नी से एक उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। मेरी मेड सर्वेंट ने कहा कि दीदी सुषमा दीदी नहीं रही। देखिए दीदी सुषमा दीदी नहीं रही, वो बहुत अच्छी थी। केवल एक छोटा सा वाक्य। मजेदार बात यह है कि वो सुषमा स्वराज जी को दीदी कह रही है। दीदी पहला जो दीदी है वो मेरी पत्नी के लिए संबोधित था, इसके बाद सुषमा जी के नाम के सामने उन्होंने दीदी लगाया। जबकि सच पूछिए तो उसका सीधे सुषमा जी से कोई लेना देना नहीं है। वो न तो अखबार पढ़ती होगी, न न्यूज सुनती होगी, न राजनीतिक चर्चाओं में वो भाग लेती होगी। इसके बावजूद और वो जिस मोहल्ले में रह रही है, आप कल्पना करके देखिए कि वो जो कॉलोनी है वो झुग्गी झोपड़ियों जैसी कॉलोनी है, सामान्य लोग रह रहे हैं जिनका सच पूछे तो राजनीति से केवल इतना ही संबंध है कि जब चुनाव हो तो इकट्ठे हम वोट दे आए, बस दैट्स ऑल। इसके बावजूद सुषमा जी के बारे में जानना यानी कि उनके निधन की सूचना वहां तक पहुंच गई थी। और ये एक उदाहरण आप मत समझिएगा, इसे आप जन जन के उदाहरण के रूप में लीजिए। और न केवल सूचना पहुंच ही गई थी बल्कि उनके नाम के आगे दीदी भी लग चुका था और साथ ही साथ दुख की अभिव्यक्ति भी हो रही थी। ये मात्र सूचना नहीं थी कि अरे वो नहीं रही, गरे कि ये बहुत इससे बहुत दुखी दुख लगा। सोच करके देखे मित्रों, तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? सच ये है कि इस पर बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिए। वैसे भी अगर आपने चैनल्स पे देखा हो तो जब सुषमा स्वराज जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो लीडर्स और जो लोग आ रहे थे, आप उनके चेहरे मोहरे को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे पहले भी बहुत बार इस तरह के श्रद्धांजलियों के दृश्य आपने देखे होंगे, लेकिन यह दृश्य बिल्कुल ही भिन्न था। सभी के चेहरे मायूस हो चुके हैं, सभी की आंखें नम हैं, गर्दन झुकी हुई है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सभी के पैरों की जो गति है वो इतने शिथिल हो गई है, ऐसा लग रहा है कि वो चल नहीं रहे हैं, अपने को घसीट रहे हैं। और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी तक शामिल थे जिनकी आंखें डबडबाई सुषमा जी को उस रूप में लेटे हुए देखकर, जो सुषमा जी संसद में या बाहर अपने देश के लिए दहाड़ती थी, शेरनी की तरह दहाड़ती थी, आज वो इतनी मौन लेटी हुई है। और सच है कि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, उनकी ऊर्जा को महसूस किया है, उनकी गतिशीलता को देखा है, वो अगर इस रूप में उन्हें देखें, कल्पना करके देखिए कि उन्हें अंदर से कैसा लग रहा होगा। मित्रों मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में नहीं हूं जिन्होंने उनके साथ काम किया, लेकिन उन सौभाग्यशाली लोगों में जरूर हूं जहां मैंने उनको बहुत निकट से देखा है, उनको काफी गहराई के साथ मन लगाकर सुना है और मेरी पत्नी ने भी उन्होंने सुना है। मेरी पत्नी ने पहली बार जब उनको सुना तो पहली बार के सुनने में ही मेरी पत्नी का संबंध उनसे कुछ अलग तरीके से ही स्थापित हो गया था, बिना कुछ काम के, बिना कुछ मतलब के। दोस्तों, ये होता कैसे है? वो कौन सी चीज है जो जन जन के तार उस एक व्यक्ति से जोड़ देती है? आखिर कोई चीज तो होती होगी। ऐसा तो नहीं था कि वो घर घर जाती थी, सब लोगों से मिलती थी, नहीं। वो क्या चीज है? मुझे लगता है कि यह बात हम सबको समझनी ही चाहिए। हम सब पदों के पीछे भागते हैं, प्रतिष्ठाओं के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, और हमें जरूरत न होने पर भी भागते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यदि ये चीजें हमें मिल गई तो अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी, हम लंबे समय तक लोगों की स्मृतियों में दर्ज हो जाएंगे। देखिए, अमरत्व है क्या? अमरत्व कुछ नहीं है, शरीर तो रह ही नहीं सकता। राम और कृष्ण के शरीर नहीं रहे हैं तो आप और हम तो किस खेत की मूली हैं। तो अमरत्व का मतलब ही सिर्फ इतना है कि हम लोगों की स्मृतियों में कितने लंबे समय तक बने रह सकते हैं। गांधी जी हमारी स्मृतियों में हैं और आगे न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में दर्ज रहेंगे, और यही अमरत्व है। अब सवाल है कि आप लोगों की स्मृतियों में दर्ज कैसे होंगे? तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा फलसफा है, और वो ये, लोगों का काम करके, लोगों के लिए काम करके, लोगों की रुचि के अनुसार काम करके। हम काम एक के लिए करते हैं, लेकिन हर कोई यह विश्वास करने लगता है कि जरूरत पड़ी तो यह व्यक्ति हमारे लिए खड़ा है। और सुषमा स्वराज जी बिल्कुल उसी रूप में लोगों को दिखाई देती थी, खासकर विदेश मंत्री के रूप में। उन्होंने जिस तरह से विदेश मंत्रालय के चरित्र को बदल दिया, विदेश मंत्रालय का चरित्र, पहले अगर वो केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करता था तो बोले नहीं, ये जो विदेश मंत्रालय है, हमारे देश के जितने भी लोग बाहर बसे हुए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, उनकी मदद करना है। और जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो लोगों ने अपने तार उनसे जोड़ने शुरू कर दिए। दोस्तों, मैं एक बहुत छोटी सी घटना बता रहा हूं, बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट कहना चाहिए, घटना नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गुरुदेव जिन्हें हम सब कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया, और नोबेल प्राइज उन्हें गीतांजलि के ऊपर मिला। और गीतांजलि क्या है? पोएट्री है, पोयम है, कलेक्शन ऑफ पोयम। और जब वो किसी से बातचीत कर रहे थे, कहीं मैंने रेफरेंस में पढ़ा था, तो सामने वाले बड़ी तारीफ कर रहे थे कि भाई आपको नोबेल प्राइज मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं ये अपने शब्दों में कह रहा हूं, भाव उनके जो थे वो मैं बिल्कुल ज्यों का त्यों आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, बहुत ही नाम है, प्रतिष्ठा है, लेकिन मैं सही मायने में नोबेल प्राइज का उस दिन हकदार अपने आप को मानूंगा जिस दिन मेरे लिखे हुए गीत ये जो बाउल ग्रुप है इनके ओंठों के जरिए गाए जाएंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में, बंगाल में एक ग्रुप होता है, बाउल गाने वाले होते हैं, वो सुबह सुबह मतलब गाने गाते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, इस तरह के गीत वो गाते हैं, सुबह सुबह वो गाते हैं, ग्रुप में गाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरे गीत वो लोग गाएंगे उस दिन मैं समझूंगा कि मैं सही में नोबेल प्राइज का हकदार था। यानी कि जब मैं जनता तक पहुंच जाऊंगा, जनता के ओंठों से नीचे उतर के कंठों से भी होते हुए जब उनके हृदय में बस जाऊंगा, तब मैं सही मायने में जन कवि बनूंगा, और जन कवि बनने के बाद ही मुझे यह अधिकार होगा कि मैं अपने को सही में नोबेल लॉरेट्स कहूं। तो दोस्तों, यह होती है जन तक पहुंचने की ताकत, उसकी आकांक्षा और उसका तरीका, जिसे सुषमा जी ने हम सबके सामने रखा है और बताया है कि कैसे प्रशासन को या कैसे राजनयिकता को, डिप्लोमेट को भी मानवीयता से जोड़ा जा सकता है। और इस धरती पर मानवीयता से बढ़कर और कोई बड़ी चीज नहीं है, और ये उन्होंने कोई दर्शन शास्त्र के जरिए नहीं बताया है, भाषणों के जरिए नहीं बताया है, बल्कि करके दिखाया है। तो दोस्तों, ऐसी महान आत्मा को मैं एक बार फिर से आप सबकी ओर से, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, और हो सका तो हम कोशिश करें कि उनके जीवन से कुछ चीजें अपने अंदर उतारें, और मुझे लगता है कि ऐसा करके शायद हम उन्हें सही पवित्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।